है सौभाग्य हम लोगों का, मुझे ऐसा लगता है कि आज देश के कोने कोने से कन्याएं और बहनें विशेष करके हमारे इस कार्यक्रम में आई हुई हैं। और ये साधारण कन्याएं नहीं है बेटा जी, ये ऐसी कन्याएं हैं जो अब ब्रह्मा कुमारी बन करके सारे समाज की सेवा के लिए निकलने वाली हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम समाधान कार्यक्रम की ओर से और अपने दर्शकों की ओर से भी उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। तो आप सभी का जो भारतवर्ष के कोने कोने से आई हुई हमारी बहनें हैं, उनका मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ समाधान कार्यक्रम में। जोरदार करकर ध्वनि से आप अपना ही स्वागत कर लें। और ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे विशेष करके हम आपके प्रश्नों को लेते हैं, लेकिन आज शुरुआत में मैं ये चाहूंगा कि इससे पहले कि आप अपने प्रश्न हमसे करें, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग विशेष करके एक कार्यक्रम में यहाँ पे आए हुए थे जो टीचर्स ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद आप लोग जाके समाज की सेवा करेंगे विशेष करके। तो ये टीचर्स ट्रेनिंग क्या है, इसमें आप लोगों को क्या सिखाया गया, क्या इसका उद्देश्य रहा, इसकी शुरुआत कब से हुई, इसके बारे में आप में से कोई बताना चाहेगा?
टीचर्स ट्रेनिंग की शुरुआत 1969 में हुई थी। टीचर्स ट्रेनिंग खास उन बहनों के लिए होती है जो अपना जीवन परमात्मा के सत्य ज्ञान को मानवता तक पहुंचाने के लिए समर्पित करना चाहती हैं। इस ट्रेनिंग में हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि आध्यात्म द्वारा हम अपनी स्वयं की आत्म उन्नति किस प्रकार कर सकते हैं और फिर विश्व परिवर्तन की तरफ अग्रसर होते हैं।
बहुत सुंदर, तो एक सुंदर लक्ष्य लेकर के आप लोग इस कार्य के लिए समर्पित होकर के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छा लक्ष्य है आप लोगों का कि अब अपने जीवन को परमात्मा कार्य के लिए अर्पित किया जाए। मैं विशेष, बहुत सारी आप बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, मैं बहुतों के अच्छे अच्छे अनुभव हो सकते हैं, लेकिन जानना चाहूंगा कि क्या क्या विशेष करके सिखाया गया आप लोगों को इस ट्रेनिंग में, क्या सीख दी गई कि आप लोग अब समाज की सेवा के लिए जा रहे हैं तो आप लोग ये करें, वहां जा करके इस प्रकार की सेवाएं करें, क्या सिखाया गया, मैं आप में से किसी एक से जानना चाहूंगा।
हमने इस ट्रेनिंग में बहुत सी नई नई बातें सीखी कि हम अपने जीवन को आदर्श कैसे बनाएं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर कैसे व्यक्तिगत जीवन में आने वाली, अपने परिवार में आने वाली, समाज में आने वाली समस्याओं को दूर करें, जिससे फिर से ये विश्व एक सुख शांति संपन्न फिर से विश्व बन जाए, फिर से एक सुख दुनिया आ जाए।
बहुत सुंदर, मतलब स्व परिवर्तन से विश्व के परिवर्तन का एक सुंदर लक्ष्य आप लोगों को दिया गया है और साथ ही इसके लिए तैयार भी आप लोगों को किया गया है। बहुत सुंदर, साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने आप लोगों को ये ट्रेनिंग दी है और हमारी तो बहुत सारी शुभकामना है कि आप लोग इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से जाकर के समाज में करें और समाज में एक परिवर्तन लाएं। अब आप में से मैं विशेष करके इसे पहले प्रश्न आप लोग लें, कुछ विशेष अनुभव आप लोगों का रहा, क्योंकि लगभग मुझे लगता है 25 से 30 दिन की आप लोगों की ट्रेनिंग यहाँ पे रही है, तो किस प्रकार का परिवर्तन आप लोगों ने अनुभव किया है कि हम पहले क्या सोचा करते थे जीवन के बारे में और अब हमारा दृष्टिकोण कैसे परिवर्तित हो गया, तो क्या कुछ विशेष अनुभव रहा आप लोगों का इस 25-30 दिनों के ट्रेनिंग के दरमियान, तो मैं एक दो से अनुभव जानना चाहूंगा।
मैं जब अपने परिवार में थी, अपनी फैमिली में थी, तो मेरी सोच ये थी कि मुझे सिर्फ एंजॉय करना है, अपनी लाइफ को सिर्फ एंजॉय करके ही जीना है, खेलना है, पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है। जॉब करके जब मैं कॉलेज में थी तो अपने फ्रेंड्स के साथ रहकर सिर्फ एंजॉय करना, और मेरी लाइफ सिर्फ फ्रेंड सर्कल तक ही थी। लेकिन जब मुझे ब्रह्मा कुमारी का परिचय मिला और जब मैं सेंटर पर जाने लगी तो सेंटर की टीचर दीदी ने हमें कहा कि आप टीचर ट्रेनिंग में जाएं, हमारे सामने प्रस्तावना रखा गया, तो मैं जब मेरे को विचार आया कि क्यों ना देखा जाए कि ट्रेनिंग में क्या होता है, अनुभव लिया जाए, और अनुभव लेने के लिए जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारी जीवन क्या है, हमारी वरिष्ठ बहनें, वरिष्ठ दादियां ब्रह्मा कुमारी में क्या सिखाया जाता है, परमात्मा इस धरा पर आकर क्या सिखाते हैं हमें। तो वो चीज मुझे सीखने को मिला कि कैसे हमारी जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति। इस संस्था में देखा गया, इस संस्था में मुझे बताया गया कि कैसे महिलाओं को आगे रखा जाता, अपनी भारत माँ को कैसे जीत दिलाई जाती, अर्थात अपने भारत को वापस स्वर्णिम, जो गांधी जी कहते थे कि सोने की चिड़िया होनी चाहिए, राम राज्य होना चाहिए, तो वो कैसे हो, वो संस्कार हमें दिए जाते। और इस लक्ष्य से मैं अब यहां रह रही हूं और अपना समर्पित जीवन इसमें देना चाहती हूं कि स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, तो अपने संस्कार परिवर्तन से हम संसार परिवर्तन कर सकेंगे। इसलिए देश को कैसे वापस तनाव मुक्त किया जाए, व्यसन मुक्त किया जाए, ये चीजें हमें यहां सिखाई गई। और मेरा विशेष अनुभव ये रहा कि उस लाइफ से ये लाइफ 100% बेटर है, क्योंकि यहाँ पे हमको सात्विकता सिखाई जाती, विशेष ذمہ داریاں دی جاتی، اسی لیے مجھے بہت اچھا لگا یہ لائف میں رہنا، اور ابھی میں اسی لائف میں رہنا چاہوں گی.
بہت سندر، بہت پیارا انوبھو ہے، ان کے لیے بات ضرور ہم کہیں گے کہ تالیاں بجائیں. بہت پیارا سا انوبھو رہا ہے کہ کیسے اب ہم سماج کی سیوا کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور سماج کا کلیان کرنا ہمارا ادیشیہ ہے، ایسا ہماری بہن نے بتایا. مجھے لگتا ہے کہ سب کے پاس بہت ہی پیارے پیارے سے انوبھو ہیں. میں ایک ایک سے نہ پوچھ کے ان سے ساموہک روپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ کیا آپ سب اپنے اس برہما کماری جیون سے خوش ہیں، سنتوشت ہیں؟ کیا آپ جا کے سماج کی وشیش سیوا کرنا چاہیں گے؟ ممی پاپا کی یاد تو نہیں آئے گی؟ نہیں آئیں گے. بہت سندر، آپ لوگوں کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ سچ مچ آپ لوگ پورے امنگ کے ساتھ، اتساہ کے ساتھ ایک نئی دشا کی اور بڑھ رہے ہیں. ہماری ڈھیر ساری شبھ کامنائیں ہیں. اور اب میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے پرشن رکھیں، آئیے اب ہم بھراتا جی کی اور چلتے ہیں. بھراتا جی، اس سے پہلے کہ میں ان کے پرشن لوں، میں چاہوں گا کہ ہماری اتنی ساری بہنیں جو سماج کی سیوا کے لیے، دیش کی سیوا کے لیے اب نکل رہی ہیں، ان کے لیے وشیش آپ کیا کہیں گے؟
یہ بہنیں سچ مچ پرشنسا کی پاتر ہیں، جنہوں نے سنسار کی ہر بات کو ایک طرف رکھ کر پربھو کاریہ کے لیے اپنے جیون کو ارپت کیا ہے. بہت بڑا یوگدان ہے یہ ان کا. دیکھیے، آج تک ہم بھگوان کی اور پیاسی نظروں سے دیکھتے تھے، ہے پربھو ہمیں مدد کرو. اب وہ سمے آیا ہے یوگ پریورتن کے لیے. بھگوان کو ان آتماؤں کی ضرورت پڑی ہے، ان آتماؤں کی جو بہت پوتر ہیں، جن میں تیاگ اور بلیدان کی بھاونا ہے، جو اپنے دیش کے لیے بہت کچھ کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں. تو سچ مچ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، تو ہم تو سبھی، ہم کیا، ہمارا سارا دیش ان کو دیکھ کر گورانوت ہوگا کہ ہمارے دیش میں وہ شیو شکتیاں جن کی مندروں میں پرتیمائیں ہیں اب ساکار روپ میں پرکٹ ہو گئی ہیں.
جی جی جی،
بہت ہی خوشی کی بات ہے.
انہیں دیکھ کے بہت زیادہ پریرنا مل رہی ہے، اتساہت ہو رہے ہیں ہم بھی بتا جی، اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری درشک بھی بہت اتساہت ہو رہے ہوں گے کہ آج بھی سماج میں ایسے یوا ہیں. مجھے لگتا ہے کہ 18 سے 28 سال کی ایج گروپ کی ہیں ہماری یہ بہنیں، لیکن سچ مچ لکش وچار کتنے اونچے ہیں ان کے.
ہاں یہ تو ہے ہی، لیکن میں ان کے ماں باپ کو بھی دھنیواد دیتا ہوں جنہوں نے ایسی دیوی تلیہ کنیاؤں کو جنم دیا ہے، جو آج کل کے یوواؤں کی راہ پہ نہ چل کے ایک الوکک راہ اختیار کر چکی ہیں، اور جو سچ مچ دیش کو سورگ بنانے میں اہم بھومکا نبھائیں گی.
بالکل بالکل، ہماری بھی شبھ کامنائیں رہیں گی برتا جی ان کے ساتھ، اور ایشور تو ان کے ساتھ ساتھ ہیں ہی، لیکن سمبھو ہے کہ ان کے من میں بھی کچھ ایسے پرشن ہوں برتا جی، کیونکہ اب یہ سماج کی سیوا کے لیے نکل رہے ہیں، تو سمبھو ہے کہ اندر کچھ پرشن ہوں گے. ہم چاہیں گے کہ وہ اپنے پرشن آپ کے سمکھ رکھیں، تو کیا ہم ان کے پرشن لیں؟
ضرور
جی. تو میں چاہوں گا کہ اب آپ کے من میں بھی جو پرشن ہے داتا جی ہمارے سمکھ ہیں، کہ آگے جا کے ہمیں کیا کرنا ہے، یا کس پرکار سے سماج کی سیوا کرنی ہے، یا اپنے اندر بھی کچھ وشیش پریورتن لانا ہے تو کیسے لانا ہے، اس کے سندرب میں جو آپ کے پرشن ہوں، تو ایک ایک کر کے اپنے پرشن آپ رکھ سکتے ہیں.
میرا نام بی کے پوجا ہے، میں دلی کالکاجی سینٹر سے آئی ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک منشیہ کے جیون میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، لیکن ہمیں کون سی باتوں کو سہن کر لینا چاہیے اور کون سی باتوں کا ہمیں سامنا کرنا چاہیے؟
ایسی باتیں جو ہماری پرگتی میں بادھک بن رہی ہوں. مان لو آپ کو لیکچر کرنا ہے، اور یہ ایک بہت اچھا چانس آپ کو ہے، اور بھوشیہ میں آپ کو لیکچر کرنے کے بہت سارے اوسر ملیں گے، لیکن اس مارگ میں کوئی چھوٹی موٹی بات یا کوئی ویکتی آپ کو بادھا اپستھت کر رہا ہے، ایسے میں اس کو فیس کرنا چاہیے، کیونکہ آپ یوگیہ ہیں اور آپ کو وہ اوسر چاہیے. پرنتو جب ہم ویوہار میں رہتے ہیں، سنگٹھن میں رہتے ہیں، کوئی ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے، ہمیں کھانے کی چیز اچھی نہیں ملتی، ہمیں رہنے سہنے کا سونے کا استھان ٹھیک سے نہیں ملتا، ہمیں اچت ویوستھا نہیں ملتی، یا کوئی ہمارا ساتھی ہی تھوڑا غلط ویوہار کرتا رہتا ہے، اس کو آرام سے سہن کر لینا چاہیے. سہن کرنے کا لکش ہے کہ ہماری مانسک استھتی بگڑے نہیں، تاکہ ہماری انر پاورز بہت ادھک بڑھ جائیں. اور فیس کرنے کا مطلب ہے کہ جو اوسر ہمیں ملتے ہیں، جو چیز ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، اس میں ہم نرنتر آگے بڑھیں. ایسی چیزوں پہ دھیان رکھنا چاہیے، انہیں فیس کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ جو سہن کرنے کی بات ہے، مان لو کہیں ہمیں اپنا راستہ تھوڑا سا ٹرن بھی کرنا ہے، تو ہمیں کر لینا چاہیے. کہیں جھکا کر آگے نکل جانا ہے، جھک کر سیس جھکا کر آگے نکل جانا چاہیے، تو اس کا ارتھ ہے ہماری مانسک استھتی بگڑے نہیں. فیس کرنے کے پیچھے لکش ہے کہ ہم نرنتر آگے بڑھتے چلیں.
जी 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 ठीक है। पूजा बहन
जी
आपको स्पष्ट है कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है
जी।
चलिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सहन भी करें और सामना करते हुए परिस्थितियों का आगे बढ़ते रहें।
जी बहुत बहुत शुक्रिया भरत।
अगला प्रश्न कौन ले रहा है?
मेरा नाम बीके स्वीटी है, मैं अहमदाबाद गुजरात से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम वीआईपी से मिलते हैं और उनकी सेवा का चांस मिलता है तो हमें 2-3 मिनट का ही टाइम देते हैं, लेकिन 2-3 मिनट टाइम में हम उनको ज्ञान को कैसे रिप्रेजेंट करें कि उनको ज्ञान भी समझ में आए और उनको ज्ञान का रंग भी चढ़े।
देखिए वैसे तो ज्ञान किसी भी व्यक्ति को ये देखकर ही देना चाहिए कि उसकी मेंटेलिटी क्या है, वो क्या चाहता है जीवन में, और अगर हमें ये भी पता हो कि उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा क्या है या उसके जीवन में भी कोई समस्याएं रही हैं या चल रही हैं क्या, उनको यदि फोकस करते हुए हम उन्हें ज्ञान देते हैं तो रिजल्ट बहुत सुंदर होता है। फिर भी ये प्रश्न जो कि कॉमन है, कहीं भी किसी से मिलने का मौका मिलता है। अब देखिए मुझे याद आ गई बात स्वामी विवेकानंद की, शिकागो में उन्होंने भाषण किया, उनके सामने और कोई बात थी नहीं, थोड़े से ही शब्द बोले थे, 2.5 मिनट उन्होंने बोला और सभा में जय जयकार हो गई पहली लाइन के बाद ही, और एक ऐसा हो गया जैसे पूरी सभा में करंट दौड़ गया हो। सच तो ये है कि जो ज्ञान देने वाला है उसके अपने वाइब्रेशंस कितने पावरफुल हैं इस पे डिपेंड करेगा। तो आप पहले उन्हें आत्मा देखकर फिर दृष्टि देते हुए और उससे पहले स्वयं को किसी भी अच्छे स्वमान में स्थित करके फिर ज्ञान देंगे, और ज्ञान भी देने के लिए ये ध्यान रखेंगे कि हमारी बातें उनके प्रैक्टिकल जीवन को छूने वाली हों, जीवन को प्रभावित करने वाली हों। हम आत्मा का ज्ञान भी देते हैं, परमात्मा का भी, सृष्टि चक्र का भी, लेकिन इस तरह से देना चाहिए कि आज मनुष्य जीवन में अध्यात्म की बहुत जरूरत है। भौतिक विकास तो चारों ओर हो रहा है, परंतु इस विकास के साथ साथ मनुष्य कहीं भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। विकास दिखाई दे रहा है लेकिन मॉरलिटी, चरित्र, अध्यात्म का संपूर्ण रूप से विनाश होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम सभी ज्ञान इस तरह देते हैं कि मनुष्य इस भौतिक विकास के साथ अपने आध्यात्मिक विकास पर भी चिंतन कर सके, अंतर्मुखी हो जाए। अन्यथा आप देख लीजिए, चाहे ग्रस्त जीवन हो, कोई व्यक्ति बहुत बड़े पद पोजीशन पर हो, विद्यार्थी जीवन हो, युवा वर्ग हो, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति एक अभाव फील कर रहा है कि समथिंग मोर, कुछ कमी रह गई है, वो अध्यात्म है, उसका हम ज्ञान देते हैं। तनाव मुक्त पर भी कुछ बोला जा सकता है, जीवन में खुशी रहे, सफलता मिले, इस पर भी एक एक दो दो लाइन सुनाई जाए। हम ये ध्यान रखें कि जब हमारे पास थोड़ा समय है तो हमारा ज्ञान देने का तरीका बड़ा सेंसफुल होना चाहिए।
जी जी जी, इससे उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, और निश्चित रूप से अब ये सब मुझे लगता है किसी प्रकार की सेवाओं के लिए जा रही हैं दादाजी, तो इस बात की बहुत ज्यादा उनको आवश्यकता पड़ेगी कि आध्यात्मिक रूप से भी खुद को सशक्त बनाए। तो सिटीजन, हम चाहेंगे कि जैसे विवेकानंद जी ने 2.5 मिनट के समय को उपयोग किया था शिकागो में, आप भी न केवल अहमदाबाद में बल्कि जहां पर भी आप जाएं वहां अपने 3 मिनट का संपूर्ण सदुपयोग करें और वैसा ही प्रभाव छोड़ें जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने छोड़ा था। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको।
जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रता जी।
अगला प्रश्न हमारी कौन सी बहन ले रही है?
मेरा नाम बीके छवि है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा यह सवाल है कि जब हमारे जीवन में विघ्न या परिस्थिति आती है तो हम उससे हट बचने के लिए अपने जीवन को कैसे मोटिवेट करें?
देखिए मनुष्य किसी भी मार्ग पर जब आगे बढ़ता है तो उसे पहले तो तैयार रहना चाहिए कि थोड़ी बहुत विघ्न बाधाएं दीवारें आएंगी, क्योंकि जब हम संगठनों में रहते हैं तो भिन्न भिन्न तरह की बातें हमारे पास आती हैं। कहीं आपका रास्ता रोका जा सकता है, आप आगे बढ़ रही हैं, लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, कहीं शारीरिक बीमारियों के विघ्न आ सकते हैं, कहीं आपका साथी कोई ऐसा मिल सकता है जिसके बोल अच्छे ना हो, संस्कार अच्छे ना हो, आपको वो हर्ट करने लगे, आपकी खुशी को छीनने लगे, और भी कहीं प्रकृति के विघ्न भी आ जाते हैं, छोटों से बड़ों से, आपके लौकिक घर से भी विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। हमेशा मनुष्य को अपने को तैयार रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि जितना बड़ा हमें काम करना है उतने ही बड़े हमारे विचार भी होने चाहिए। पहली इम्पोर्टेंट बात है, बड़े काम करने वालों के विचार यदि बड़े नहीं हैं, तो उनके मार्ग में जल्दी रुकावट प्रतीत होगी। इसलिए छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना, इसको अपनी नेचर बना लेनी चाहिए। विघ्न हमारी विवेक शक्ति को भी बढ़ाते हैं और हर विघ्न हमारे कदमों को आगे की ओर ले चलता है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बस याद रखेंगे, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं तो ऐसी आत्मा हूँ जिनका नाम स्मरण करके भक्तों के विघ्न भी दूर हो जाते हैं, अपने स्वमान में आ जाएंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। तो अनेक तरह के विघ्न आपके जीवन से स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है इस त्याग और तपस्या भरे जीवन में वो व्यक्ति कभी विघ्नों के वश नहीं होता जो रोज अमृत वेले प्रभु मिलन का सुख लेता है, स्वयं में शक्तियां और वरदान भरता है और ईश्वरीय ज्ञान जो रोज सवेरे हमें दिया जाता है, जिसे हम मुरली क्लास कहते हैं, उसमें बैठना, उसको श्रवण करना, उसका बहुत आनंद लेना, जो इन दो चीजों को कभी छोड़ता नहीं, उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आते। साथ साथ अपने स्वभाव को बहुत सॉफ्ट बनाना चाहिए। संक्षेप में मैं कहूंगा, ज्ञान की शक्ति और योग का बल दोनों जिसके साथ हैं, विघ्न उनका नाम सुन के ही घबरा जाते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया दत्ता जी। आपको कहीं इस बात का थोड़ा सा डर तो नहीं है कि हमने एक नए जीवन की शुरुआत तो कर ली, लेकिन आगे जाकर के कहीं कोई बड़ी सी विघ्न या समस्या हमारे सामने ना आ जाए, ऐसा कोई भय तो नहीं ना?
नहीं,
लेकिन उसके लिए तैयार हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी एग्जाम से पहले अपनी पूरी तैयारी हो, जैसे भैता जी ने कहा है, तो सचमुच हम हर प्रकार के पेपर में सफल होते हैं। आप हमेशा सफल होती रहे हर फील्ड में, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। अगला प्रश्न किस प्रदेश से आ रहा है?
मेरा नाम मृदुल है और मैं पटना से हूँ। मेरा एक सवाल है कि जैसे कि हम 7 दिन का कोर्स कराते हैं जब लोगों को, तो वो 7 दिन के कोर्स तो वो कर लेते, लेकिन वो मुरली से परमानेंट जुड़ जाए, पर ऐसा कैसे हो सकता है?
बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि हमारे सेवा केंद्रों पर 7 डेज कोर्स करने वाले बहुत लोग आते हैं। एवरेज हर सेवा केंद्र पे 400 से 500 तक लोग प्रतिवर्ष कोर्स करते हैं, और यदि वो ज्ञान को आगे भी कंटिन्यू करें तो बहुत बड़ी सेवा हम 2-4 साल में ही कर सकते हैं। परंतु हमारे यहाँ बात धारणाओं की है, आत्मा को पावन बनाने की है, अपने जीवन को परिवर्तन करने की है, सब व्यसन छोड़ने की है, तो कई लोग इसका साहस नहीं कर पाते। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, सब बातें बहुत अच्छी हैं, वो संपर्क में भी रहना चाहते हैं, वो बीच बीच में आते भी हैं, लेकिन इन धारणाओं को अपनाते नहीं। इसमें चाहिए, देखिए आजकल मैं आप सभी को कहूंगा, संसार अब बदल चुका है। हमारा कोर्स देने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति जिस भावना से जो प्राप्त करने के लिए आया है वो उसे प्राप्त हो। जैसे किसी को बहुत प्यास लगी हो, वो हमसे पानी मांग रहा हो, लेकिन हम उसे रसगुल्ले खिला रहे हो, तो वो संतुष्ट नहीं होता, उसे पानी चाहिए। भले रसगुल्ले बहुत कीमती हैं, बड़े टेस्टी हैं, पर उस समय उसकी प्यास है, उसे पानी से तृप्ति होगी। ऐसे ही जब आप कोर्स दें तो आप ये समझ लें कि जिसको हम कोर्स दे रहे हैं वो क्या चाहता है, उसे बात भी कर सकते हैं। किसी के घर में कोई समस्या हो सकती है, किसी के घर में पति पत्नी का झगड़ा हो सकता है, किसी को नींद की समस्या हो सकती है, कोई आजकल डिप्रेशन में चल रहे हैं, विद्यार्थियों में एकाग्रता की समस्या हो सकती है, माँ बाप और बच्चों के संबंधों में टकराव की समस्या हो सकती है, उस अनुसार अपने ज्ञान को टर्न करना चाहिए। आत्मा का ज्ञान हम दे रहे हैं तो उन्हें सिखाना होगा, आत्मा के अभ्यास को इस तरह से करो, ये समस्या ठीक हो जाएगी। बिजनेस में लॉस हो रहा है, दुकान बहुत बड़ी है लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं, ऐसी समस्या लेकर आपके पास लोग आते हैं, उसमें परमात्मा शक्ति का कैसे प्रयोग किया जाए ये आप सिखाएंगे तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो अपने ज्ञान को ऐसा कर दें, ज्ञान देने के तरीके को, ताकि उनको आज से ही उनके जीवन में उसका लाभ अनुभव होने लगे, तब उनको महसूस होगा कि भाई यहाँ से हमें सब कुछ प्राप्त होगा। जैसे कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाए, कैसी बीमारी हो और गोली दे, और डॉक्टर की गोली देने से पेशेंट को लगे कि बस गोली खाते ही 10% ठीक हो गए, तो वो और भी गोली खाएगा, अगले दिन भी जाएगा और पेशेंट को भी बताएगा कि वहां जाओ, वो डॉक्टर बहुत अच्छे। और मान लो 10 दिन गोली खाते रहे और डॉक्टर को गाली भी देते रहे कि कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, कैसा डॉक्टर है, तो कोई उसके पास नहीं जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने ज्ञान देने के तरीके को ऐसा सूक्ष्म बनाए ताकि लोगों को प्रैक्टिकल में लाभ होने लगे। और साथ साथ में ये कहूंगा, जो ज्ञान हम दूसरों को दे रहे हैं उसको पहले अपने जीवन में अनुभव करें, अपने जीवन में धारण करें, तो हमारे बोल से वाइब्रेशंस भी साथ चलेंगे और ये बहुत इफेक्टिवली काम करेंगे। और तीसरी चीज, जब आप कोर्स कराने जाएं, तीन बातें विशेष रूप से करें। उससे पहले 3 मिनट बाबा के रूम में बैठकर मेडिटेशन का अभ्यास करें, उसे आत्मिक दृष्टि से देखें और स्वयं को किसी स्वमान में स्थित करें, जैसे मैं इस देवी हूँ, या मैं एक महान आत्मा हूँ, या मैं पूर्वज हूँ। इन तीनों अभ्यास को करने से जब आप किसी को भी ज्ञान देंगे तो उसको लगेगा कि ये ज्ञान मेरे लिए है, इससे मेरा कल्याण होगा। और अगर 500 लोग क्लास कोर्स कर रहे हैं तो 200 तो अवश्य साल में स्टूडेंट बन ही जाएंगे। तो मैं चाहूंगा ये जो हमारा नया ग्रुप है 450 बहनों का, ये ऐसी कला सीख कर जाए कि कम से कम कोर्स देने वालों में से 50% योगी बन जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रता जी। अगला प्रश्न कौन पूछ रहा है?
मेरा नाम बीके नेहा है, मैं दिल्ली कृष्णनगर सेंटर से हूँ। मेरा क्वेश्चन है, जब हम किसी को ज्ञान देते हैं तो हमें बताया गया है कि उसकी नब्ज देखकर हमें ज्ञान देना है, तो हम कैसे उसकी नब्ज पहचाने? जैसे किसी व्यक्ति को भोजन चाहिए, भूख लगी है तो भोजन चाहिए, पानी नहीं चाहिए, और अगर प्यासा है तो उसे पानी चाहिए, भोजन नहीं चाहिए, तो हम ये कैसे पता लगाएं, कैसे परखें कि उसकी आवश्यकताएं क्या है?
ये प्रश्न ऐसा है कि इसके लिए कोई मीटर तो बनाया गया नहीं है। हमें अपने लेवल पर, अपने बुद्धि के लेवल से किसी को देखकर भी ये समझना होगा कि इसकी आवश्यकता क्या है। देखिए, मनुष्य का चेहरा ही ऐसा होता है जो उसके जीवन का दर्पण है। एक व्यक्ति यदि बहुत दुखी है, उसके चेहरे पर उसके हाव भाव होते हैं। एक व्यक्ति यदि जीवन में निराश है, उसका चेहरा उसकी कहानी कहता है। एक व्यक्ति के संबंधों में यदि बहुत गड़बड़ हो गई है, उसके चेहरे पर उसके लक्षण प्रकट होते रहते हैं। अगर हम आत्मिक दृष्टि में शरीरीपन के अभ्यास में होंगे और हमारा योग प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे अवश्य होगा, तो ये परखने की शक्ति हमारी बढ़ती जाएगी। इसके साथ साथ उससे कुछ बात भी की जाए ताकि उसका जीवन का परिचय हमें मिल जाए थोड़ा सा, उस अनुसार भी हम उसको परख सकेंगे कि उसको हमें क्या देना है। मूल रूप से हमारी बुद्धि की लाइन जितनी क्लियर होगी, यानी हम अपनी बुद्धि को व्यर्थ से जितना मुक्त रखेंगे। बुद्धि जब व्यर्थ से मुक्त होती है तो जो हमारे सामने आता है उसका एक चित्र हमारी बुद्धि में आ जाता है, सहज ही हमें समझ में आ जाता है इसको क्या देना है। और आपको ऐसा भी महसूस होगा और अनुभव होगा कि आपको ये जानने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी, आपको आवश्यकता ही नहीं होगी कि इसको क्या चाहिए। नेचुरली एंड वेरी ऑटोमेटिकली आप वही उनको देंगे जो उनको चाहिए। इसके लिए केवल अपनी मनोस्थिति को हमें ऊंचा उठाना है। इसलिए सेवाओं के फील्ड में रहते हुए आप सभी बहनें अपनी योग की स्थिति का विशेष विशेष ध्यान रखेंगे।
दत्ता जी, एक बहुत ही ऊंची मानसिक स्थिति की आवश्यकता होगी जैसा आप कह रहे हैं। क्या कुछ ऐसा फॉर्म भी बनाया जा सकता है जिसे उनसे भरवाया जाए और उसके बाद उनकी जो जरूरत है या आवश्यकता है उसका बोध हो जाए, उस अनुसार उन्हें टीच किया?
बिल्कुल, हमारे यहाँ पहले ऐसी व्यवस्था थी, 7-8 पॉइंट उसमें होते थे, उसमें उनका केवल इंट्रोडक्शन होता था। लेकिन हम थोड़ा एक ऐसा फॉर्म बना सकते हैं जिसे उनकी आवश्यकताओं की हमें बिल्कुल साफ न केवल महसूसता हो जाए लेकिन डीप फीलिंग भी हो जाए कि ये व्यक्ति इसलिए हमारे पास आया है, इसको ये दुख हमारे पास लाया है। थोड़ी उसकी बैकग्राउंड से संबंधित एक क्वेश्चन हो, वर्तमान मनोस्थिति से संबंधित एक क्वेश्चन हो, कि आपके जीवन में कोई छोटी मोटी समस्या है जिसको बता सके इस ढंग का क्वेश्चन हो, ऐसे 5 क्वेश्चन भी यदि उनके सामने रख दिए जाएं, तो मनुष्य काफी खुल जाता है और तब हम उनकी आवश्यकता अनुसार उनको दे सकते हैं।
आजकल डिप्रेशन के केसेस बहुत आ रहे हैं दत्ता जी, और जो कि अब हमारी ये सभी बहनें जाकर की अब ऐसी सेवाएं करेंगी तो शायद उनसे रूबरू होना पड़े। तो यदि ऐसे लोग आए कोर्स करने के लिए तो क्या जो कोर्स दिया जाता है वही कराया जाए या कुछ और दें, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं तो इनके लिए बहुत लाभदायक
होगा। नहीं देखिए, इसमें कोर्स में मैं जो समझता हूँ इन्हें इनकी ट्रेनिंग में अवश्य सिखाया गया होगा आत्मा का ज्ञान देते हुए। आत्मा में जब मन बुद्धि और संस्कार तीन चीजें हैं, इन तीनों चीजों पे हम विशेष ध्यान दिलाएं आने वालों का। मन क्या सोचता है, क्या नहीं सोचना चाहिए, क्यों उनके मन में डिप्रेशन हो गया है, बुद्धि को व्यर्थ से कैसे खाली रखना चाहिए, और हमारे अपने ही संस्कार किस तरह सुखदायी बन जाए, सॉफ्ट बन जाए, स्वीट बन जाए, ताकि हमें जीवन में ये कठिनाइयां हो ही नहीं। तो विशेष रूप से उनको ये समझ में आ जाएगा कि उनके डिप्रेशन का कारण उनकी निगेटिविटी है या उनके डिप्रेशन का कारण उनके जीवन में हुई कोई विशेष घटना है जिसने उसके मन को झकझोर के रख दिया है, एकदम निराश कर दिया है, उससे फिर हम उन्हें बाहर निकालेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दत्ता जी। रिहा, मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा आपको अपना प्रश्न। और जब आप वहां जाएं कोर्स कराएं तो वैसे भी कहते हैं कि करते करते भी बहुत सारे अनुभव आते जाते हैं, फिर समाधान का मंच तो है ही आप लोगों के लिए। जब कभी और भी ऐसे प्रश्न आए आप अवश्य प्रेषित कीजिएगा। अगला प्रश्न कौन पूछ रहा है?
भाई जी, मेरा नाम है बीके पूजा, मैं धुले महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सेवा केंद्र पर अभी जाएंगे तो वहाँ पे सेवाएं बहुत रहती है कि दिन भर कोई भी भाई बहन कोर्सेज के लिए आते हैं और कई प्रकार की सेवा होती है, लेकिन उसमें भी हमें हमारी स्वोन्नति और तपस्या पे ध्यान देना होता है। तो इन दोनों बातों का हम बैलेंस कैसे बनाए रखे, सेवा करते हुए भी हमारी तपस्या भी अच्छी से हो?
वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत जगह होता है कि मनुष्य सेवाओं में बिजी हो जाता है और सेवा करते करते कर्म कॉन्शियस हो जाता है, फिर उसका ध्यान अपनी साधनाओं से नेचुरली पीछे हटने लगता है। और ये स्थिति अगर दो चार मास किसी की बन जाए कि वो सेवा में रत ज्यादा हो, यानी कार्यों में ज्यादा लग जाए और साधनाएं बिल्कुल न हो, तो फिर साधनाओं के प्रति अरुचि भी हो जाती है, उसमें जो रस रहना चाहिए वो भी समाप्त हो जाता है और मनुष्य स्वीकार कर लेता है कि ठीक है इस जीवन में भी तो कुछ बुराई नहीं है, हम सारा दिन सेवा कर रहे हैं, दैट्स फाइन। लेकिन बिना साधनाओं के इस जीवन की सच्ची उन्नति नहीं होती है। सबको ये याद रखना चाहिए कि राजयोग की साधना ही हमें विजयी बनाती है, मनोविकारों पर हमारी विजय होती है, हमारे संस्कार डिवाइन होते हैं, हमारे बोल में भी पावर आती है। और हम भले फिर कोई साधारण कर्म ही करें लेकिन हमारा वो साधारण कर्म भी बहुत अलौकिक और दूसरों को प्रेरणा देने वाला हो जाता है। इसलिए पहले से ही आप ऐसा रखेंगे कि रोज सवेरे उठना, योग अभ्यास करना। इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि रात को टाइम पे सो जाना, अधिक से अधिक 10:30 बजे तक। कभी कभी सेवा केंद्रों पर कार्य ज्यादा चलता है, कभी कभी की बात अलग है, पर डेली हमारी दिनचर्या ऐसी ना हो जाए कि हम 12-12 बजे तक सेवाओं में रत रहे। 10:30 हो जाएंगे तो 4:45 उठना बिल्कुल सरल होगा। एक इस चीज पर बहुत ध्यान देना है। दूसरा, अपनी थोड़ी सी स्टडी, सारे दिन में एक आधा घंटा आपको ईश्वरीय महावाक्यों के अध्ययन के लिए अवश्य निकालना है और कुछ लिखना है उसके। इसमें आप आधा घंटा रोज फिक्स कर दें, स्पेयर कर लें अपनी दिनचर्या से, इससे जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति होगी। हर सेवा केंद्र पर बाबा के कक्ष बने होते हैं जिनको हम योग कक्ष कहते हैं, जिनमें सभी भाई बहने आकर योग साधना करते हैं। आप भी लक्ष्य बना लें कि कार्य से थोड़ी फुर्सत मिली और 10-10 मिनट वहां जाकर बैठें। 3 बार अवश्य दिन में बैठ जाएं तो ये 3 बार का 10-10 मिनट का मेडिटेशन आपको काफी अच्छी मदद करेगा। ऐसे सोने से पहले 15 मिनट स्पेयर कर लें। ऐसी दिनचर्या में कुछ चीजें निश्चित कर लेनी है। निश्चित करने से मनुष्य उन चीजों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस में लाता है। साथ में एक बहुत अच्छी विधि यह है, इसको बहुत अच्छा एंजॉय करना हो इस सेवा से भरे हुए जीवन को, तो भिन्न भिन्न सेवाओं में भी भिन्न भिन्न तरह के अभ्यास राजयोग के किए जाएं। उससे कभी अगर आपको बैठने का टाइम न भी मिले, कभी अति व्यस्तता हो जाए, तो आपको कुछ मिसिंग फील नहीं होगी। इस तरह आप अपनी दिनचर्या को वेल सेटअप करना और सदा उसको फॉलो करना है। ध्यान रखना 8-10 दिन तक भी कंटिन्यू अलबेलापन ना आ जाए, नहीं तो फिर रुचि समाप्त होने लगती है। एक दिन मान लो आपने सोच लिया कि आज तुम बहुत बिजी हैं, चलो क्लास में क्या जाना, कल जाएंगे। कल जब फिर वही टाइम आएगा तो फिर वही संकल्प आएगा कि आज भी तो बहुत काम है, बाद में पढ़ लेंगे। और अगर ऐसा 8-10 दिन आपका मिस हो गया तो मिस करने की आदत पड़ जाएगी और उससे बहुत बड़ा जीवन में लॉस होगा। इसलिए अपने जीवन के कुछ नियम बनाकर चलना और उन सिद्धांतों पर सदा अचल अडोल रहना।
थैंक यू सो मच भाई जी।
नियम की आपने बात कही भैता जी, और पूजा बहन ने बहुत अच्छा प्रश्न किया था। एक लंबा समय है भैता जी आपने पूरे यज्ञ में बिताया है, समर्पित जीवन आपका रहा है और काफी सफल समर्पित जीवन रहा है। अब ये सारी हमारी बहनें शुरुआत कर रही हैं, तो इनकी तरफ से मैं जानना चाहूंगा कि आपने क्या ऐसे सूत्र बनाए अपने जीवन के जिन्होंने लगातार आपको उन्नति के पथ पे अग्रसर किया, वो सूत्र वो नियम मैं इन बहनों के लिए जानना चाहूंगा।
देखिए, मैं तो कई बार बता चुका हूं कि मैंने, मुझे जहां तक अंदाज है, 1970 में ही अपने जीवन के 10 नियम बनाए थे। और मैंने तो वो नियम ऐसे बनाए थे कि मैं इस 10 नियमों में अपने को बांध रहा हूं, किसी भी कारण से मुझे इन नियमों की रस्सी को तोड़ना नहीं है। उसमें जैसा पहले 2 मुझे बहुत याद रहते हैं, जिसने मुझे बहुत मदद की और बहुत सारे अनुभव दिए कि मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं। यज्ञ भी साधारण था, धनवान नहीं था यज्ञ, कुछ भी मांगना नहीं, जो है उसी में संतुष्टता पूर्वक जीना, आनंद लेना। दूसरा, सेवाओं में कभी ना नहीं कहूंगा। अब ये भी ऐसा कार्य है, एक बहुत बड़ा चैलेंज था, सेवाएं बहुत होती थी, हम करने वाले कम होते थे, लेकिन उसमें ही ईश्वरीय सहयोग और पहले नियम के साथ प्रकृति कैसे आप ये सब कुछ प्रदान करती है, ये बहुत अच्छे अनुभव हुए। ऐसे प्योरिटी के लिए बहुत अच्छे नियम थे कि एक बार इस मार्ग पे कदम रख दिया, अब मुड़ के पीछे नहीं देखना है
जी।
चाहे प्राण चले जाए लेकिन ये धारणा हमारी नहीं जाएगी,
पवित्रता
की। इसके लिए बहुत अच्छा नियम बना था, नींद के लिए बहुत अच्छा बनाया था। हम भी इन बहनों की तरह छोटी आयु के थे, तो छोटी आयु वालों को तो अच्छी नींद आती है, खासकर सवेरे की नींद बड़ी मीठी होती है, तो मैंने भी उसके लिए नियम बनाया, इतने घंटे ही नींद करेंगे। थोड़ा भोजन भी अपना कंट्रोल में किया, उस आयु में भोजन भी अच्छा खाया जाता है। तो ऐसे ही नियम बनाए कि व्यर्थ से जैसे हमारा कोई नाता नहीं, अपने बड़ों से किसी बात पर अननेसेसरीली डिबेट नहीं करेंगे, टकराव से मुक्त होने के लिए मैंने ये बहुत अच्छी बातें रखी थी कि बिल्कुल सबको अच्छी दृष्टि से देखेंगे और किसी बात में किसी से भी डिबेट नहीं करेंगे, ताकि कहीं टकराव हो ही ना, सिर झुका के आगे निकल जाएंगे। ऐसे बहुत अच्छे नियम जो बाबा मुरलियों में सदा सुनाते हैं, उसमें अपने को बांधा था और बहुत फायदा हुआ।
तो कहते जी, यदि आज हमारी इन सभी बहनों को आप 3 डूज और 3 डोंट्स देना चाहें कि बहनें ये 3 चीजें करना, सेवा केंद्र पे ये 3 चीजें ना करना, तो वो क्या होंगे?
पहले ना करने की बात सुना ना।
आप क्या चाहेंगे, क्या सुना रहता जी पहले?
दोनों तीन तीन ही बातें हैं। देखिए, करने की बात तो ये है, अमृत वेला रोज प्रभु मिलन का बहुत सुखद आनंद लेना ही है। और दूसरी बात है, अपने संस्कारों को स्वीट और सॉफ्ट रखना है। और तीसरी बात है, अपने व्यवहार से, अपने बोल से, संगठनों में रहना है तो सबको सुख देना है। जो नहीं करना है वो ये, व्यर्थ चर्चाएं, व्यर्थ सुनना, इनसे स्वयं को मोक्ष। क्योंकि अगर व्यर्थ में मनुष्य रहता है तो जीवन का लक्ष्य उसे कभी नहीं मिलता है। जीवन में दूसरी धारणा जो नहीं करनी है, अलबेलापन और सुस्ती नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। और तीसरी चीज मैं कहूंगा, जो नहीं करनी है, मुख से कभी पत्थर नहीं निकले, अमृत की बरसात हो, मुख से फूल झड़े, आप बोले तो जैसे रूप बसंत के लिए वर्णन है शास्त्रों में, रतन निकलते थे मुख से, आपके मुख से भी रतन निकले, अमृत की बोछार हो, बस ये 3 चीजें नहीं करेंगे और वो 3 करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा
जी। सब आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दाता जी, और मुझे उम्मीद है कि ये 3 चीजें आप गांठ बांध के रखेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है जी। अगला प्रश्न कौन पूछ रहा है हमारी बहनों में से?
जी, मेरा नाम वर्षा है, मैं बड़ोड़ा गुजरात से आई हूँ। मेरा सवाल है कि यूपी में जहाँ से आई हूँ वहाँ आसपास ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ बहुत लोग शराब पीते हैं, तो कई माताएं हमें प्रश्न करती है सेंटर पर कि उन लोगों को व्यसन से मुक्त कैसे करें, निर्वसन कैसे बनाए, तो हमें उनके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए?
आपको उनके पास जाकर पहले तो प्रदर्शनी लगानी चाहिए, अपनी आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो इसमें होता क्या है कि एक प्रदर्शनी को देखने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, फिर वहाँ माहौल बन जाता है और हमारा आजकल व्यसन मुक्ति का शिविर भी चलता है जिसमें हमारे बहुत सारे भाई बहने इसके लिए दवाई भी देते हैं। आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने व्यसन को छोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं जो उनके पूरे अधीन हो चुके होते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, पर कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो छोड़ने के इच्छुक होंगे, उन्हें आप होम्योपैथी दवाई भी दिला सकते हैं। लेकिन साथ साथ प्रदर्शनी में ज्ञान देते हुए, हम सब देव कुल की आत्माएं हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, ये दो अवेयरनेस उन सबको बहुत अच्छी तरह से दिलानी है। बार बार ऐसी कुछ कमेंट्री बना दी जाए बहुत अच्छी, कुछ ऐसे स्टॉल बना दिए जाएं, मेडिटेशन रूम वहां बना दिया जाए जहाँ सब लोग आकर शांति में बैठें, अपने अंतर की यात्रा करें और अपने को याद दिलाएं तुम बहुत पवित्र हो, तो धीरे धीरे उन्हें रियलाइजेशन होने लगेगा और वो छोड़ने की शक्ति और दृढ़ इच्छा उनके अंदर पैदा हो जाएगी। इस तरह का एक अभियान आप वहाँ चलाएं वीकली, वीक में एक बार छुट्टी के दिन, तो आप देखेंगे कि बहुत लोग इससे मुक्त हो जाएंगे। हमारे पास गुजरात के अनुभव है, पालनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है जहाँ रोज रात को सभी लोग शराब पी के और बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, बदनाम था वो गांव, घर घर में मारपीट होती थी, वहाँ बहनों ने ऐसा प्रोग्राम किया और आज वो गांव पूरी तरह से व्यसन मुक्त है। हमारे राजस्थान में भी एक दो गांव जो हमारे बिल्कुल पास हैं व्यसन मुक्त हो चुके हैं। एक अभियान चलाने की आवश्यकता होगी और लगातार एक साल तक चलाने की जरूरत पड़ेगी
जी। अब इनका गांव भी लगता है व्यसन मुक्त हो गया,
बिल्कुल।
अब अगली जिम्मेवारी आपकी है कि आप अपने गांव में जाके उसे भी एक आदर्श गांव बनाएं जहां किसी भी प्रकार का व्यसन ना हो। हमारी बहुत सारी शुभकामना आपके साथ है,
बहुत बहुत थैंक्स
जी। अगला प्रश्न।
मेरा नाम बीके कीर्ति है, मैं पंजाब से आई हूँ। भ्राता जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम संगठन में जाते हैं तो संगठन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? जैसा कि हम जानते हैं कि वैरायटी ड्रामा है, वैरायटी पार्ट है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्वभाव संस्कार मैच नहीं करते, तो हमें कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ खुद को मोल्ड करना है, कहाँ सहन करना है, आपका सुझाव चाहते हैं।
हाँ, बहुत अच्छी और उपयोगी ये बात है। संगठन में हम सबको रहना पड़ता है, आपको भी रहना पड़ेगा। एक दूसरे को हम प्यार देते चलें और संगठन हमारे लिए वरदान बन जाए, हमारी उन्नति का एक आधार बन जाए, अगर ऐसा होता है तो सचमुच ये जीवन बहुत सुखद हो जाता है और निरंतर हम प्रगति के पथ पर अग्रसर रहते हैं। तो एक तो संगठन में रहते हुए अपनी दृष्टि दूसरों के लिए बहुत अच्छी रखनी है, एटीट्यूड्स का बड़ा महत्व है। ये नहीं सोचना है ये व्यक्ति ऐसा है, ये बहन ऐसी है, फलाना भाई ऐसा है। नो, दे आर ऑल आर ग्रेट सोल्स, सभी भगवान के बच्चे, महान आत्माएं हैं वो। ऐसी दृष्टि रखकर हमें संगठन में रहना चाहिए। दूसरा, आप अपने स्वमान को बहुत बढ़ा दें, मैं महान आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मुझे देना है, सबको देने की भावना रहेगी तो संगठन हमारे लिए बहुत सुखदायी हो जाएगा। और तीसरी एक धारणा पर मैं ध्यान दिलाऊंगा आपको, हमेशा संगठन में सुखद अनुभूति के लिए बहुत हल्के रखकर अपने को चलना है, बहुत हल्के, ये एक्सेप्ट करते हुए कि सभी आत्माएं अलग अलग हैं, सबकी मन बुद्धि संस्कार अलग अलग हैं, ये संसार वैरायटी फूलों का गुलदस्ता है, वैरायटी तरह के मनुष्य इसमें हैं, मुझे सबके साथ एडजस्ट होके चलना है, मुकाबले बस इसके कि मेरे साथ सब एडजस्ट होके चलें, पहले मुझे उनके साथ एडजस्ट करना है तो वो भी फिर मेरे साथ मिलकर चलेंगे। ऐसी थोड़ी सी बातें याद रखेंगे तो सब अच्छा होगा। लेकिन ये साथ में ध्यान रखना है कि संगठनों में जो सबसे बड़ी कठिनाई होती है वो होती है मनुष्य का अहम, उसकी जिद। इन दोनों संस्कारों को यदि आप छोड़ के चलेंगे तो संगठन आपकी उन्नति में बड़ा सहायक हो जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मेरा नाम योगिता है, मैं मुंबई से आई हूँ और भ्राता जी को मेरा एक सवाल है कि हम स्वयं को और सेवा केंद्रों को निर्विघ्न कैसे बनाएं और उससे हम कैसे मुक्त पाएं।
बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि संसार में वाइब्रेशंस चारों ओर बहुत ही नेगेटिव हो गए हैं, तामसिकता का माहौल है, अच्छे कार्यों में ज्यादा विघ्न आते हैं, और जहां कार्य बहुत विशाल स्तर पर चलता हो, जहां कार्य करने वाले बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हों, वहां भी विघ्नों का आना संभव होता है। लेकिन पहले तो हमारा लक्ष्य रहना चाहिए, हमें अपनी सेवाओं को, अपने सेवा केंद्र को और स्वयं के जीवन को निर्विघ्न रखना है। स्वयं के जीवन को निर्विघ्न रखने के लिए सॉफ्ट नेचर और साथ में स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं शिव शक्ति हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। कोई भी विघ्न मेरे पास आएगा तो वैसे ही जल जाएगा जैसे अग्नि के पास मच्छर आकर जल जाते हैं। सेवाओं को निर्विघ्न बनाना है, इसका एक ही तरीका है कि सेवा करते हुए अहम से मुक्त सभी को रहना है। जितना सभी निर्माण चित्त निरहंकारी होकर रहेंगे, सेवा सहज भाव से चलेगी। और अपने को ये ख्याल रखना है कि मुझे सेवाओं को निर्विघ्न बनाने में क्या योगदान देना है, मैं क्या योगदान दूं। अपनी तरफ से हमेशा तैयार रहना चाहिए कि यदि किसी सेवा में विघ्न को नष्ट करने के लिए मुझे झुकना पड़ता है तो मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। सेवा केंद्रों में विघ्न न आए, इसके लिए वहाँ के वाइब्रेशंस में बहुत प्योरिटी और योग का प्रभाव होना चाहिए। जहाँ प्योरिटी और योग युक्त वातावरण है, वो सेवा केंद्र सदा निर्विघ्न रहता है। इन तीनों चीजों को आप ध्यान में रखकर चलेंगे तो स्वयं, सेवाएं और सेवा केंद्र सदा निर्विघ्न रहेंगे। और आप ये लक्ष्य लेकर जाए यहाँ से कि हमें इसमें बहुत अच्छा योगदान देना है।
धन्यवाद,
बहुत बहुत शुक्रिया दाता जी। सभी के बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न रहे हैं और मुझे लगता है कि आप सभी के प्रश्नों का सुंदर आपको समाधान प्राप्त हुआ है और आपका जीवन आगे इसी प्रकार से समाधान युक्त रहे। और अपने प्रश्न यदि मन में आए भी तो अवश्य इस मंच तक प्रेषित करते रहिएगा। बहुत सारे और भी प्रश्न हो सकते हैं लेकिन समय का एक अभाव है, सीमा है, इसीलिए हम यही संपन्न करेंगे। लेकिन जाते जाते बेहतर जी, चूंकि अब ये सब एक नए मार्ग की ओर बढ़ रही हैं, एक नया पथ इन्होंने चुना है, बहुत सारी चुनौतियां आगे आएंगी भी लेकिन ईश्वर तो साथ हैं ही, फिर भी मैं समाधान परिवार की तरफ से, आपकी तरफ से अपनी इन बहनों के लिए शुभकामनाओं के चंद शब्द सुनना चाहूंगा।
बिल्कुल, मुझे तो इन बहनों को देखकर अत्यंत गर्व होता है, न केवल आनंद और खुशी, गर्व होता है कि हमारी बहनें इतनी महान हैं, जिनका जीवन पवित्रता से भरपूर है, जिनके चेहरे पर दिव्यता और तेज है, और जो भगवान से मिलते हैं रोज, और जो विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को कहूंगा, आप सभी का जीवन बहुत आनंद से भरपूर रहे, आप सदा योग युक्त रहें और इस संसार में ऐसे विचरण करें मानो इस संसार में अवतरित फरिश्ते हों, देवात्माएं इस धरा पर आई हों, और आपका जीवन इतना सुंदर हो कि आपके जीवन को देखकर ही सभी अपने जीवन को बदलने की श्रेष्ठ प्रेरणा लें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी श्रेष्ठ इच्छा है कि आप लगातार अपने पथ पर उन्नति की ओर आगे चलते रहें और जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल को प्राप्त कर लें। धन्यवाद,
बहुत बहुत शुक्रिया दाता जी। बहुत सुंदर शुभकामनाओं के शब्द हमारी बहनों को आपने अर्पित किए हैं और हमारी भी शुभकामना रहेगी कि वो बहुत बहुत आगे बढ़ें। आज के सुंदर प्रकाश के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी जो देश के कोने कोने से यहाँ हमारे बीच पधारे हैं, आज के इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की, अपना अमूल्य समय दिया और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपने शेयर किए हैं, हमारी बहुत सारी दिल की शुभकामना रहेगी कि आप जहां पे भी रहें वहां अंधेरे में प्रकाश कर दें, जहां कहीं भी लोगों के मन में अंधकार हो उसे उजाले में तब्दील कर दें, दुख को सुख में तब्दील कर दें और आपका जीवन भी हमेशा सुख शांति से परिपूर्ण रहे। हमारी ढेर सारी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। आप यहां आए, बारम्बार आते रहें, बहुत सारे लोगों को लाती रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि एक बार अपने लिए ही जोरदार तालियां बजा लें। आप लोगों का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। और मित्रों, आपको हम कैसे भूल सकते हैं, आप तो हमेशा के हमारे साथी हैं। आज की चर्चा में आपने देखा एक सुंदर युवा पीढ़ी मित्रों, हम कहते हैं कि युवा किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन इन युवाओं को देख करके लगता है कि सचमुच हम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि यदि युवा बीड़ा उठा लेता है कि अब हम समाज का परिवर्तन करेंगे, देश का परिवर्तन करेंगे या सकारात्मकता की एक लहर फैलाएंगे, तो सचमुच वो दिन दूर नहीं है जबकि सारा संसार स्वर्ग में तब्दील हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि जो मर कर भी न मरे उसे भूत कहते हैं, जो ले जाता है उठाकर जिंदगी को उसे यमदूत कहते हैं, और जो तोड़ने से भी न टूटे उसे मजबूत कहते हैं, और साथ ही जो कर सकता है संसार का परिवर्तन उसे यूथ कहते हैं। तो आज ये युवा पीढ़ी हमारे साथ थी जिन्होंने प्रण कर लिया है कि हम समाज का परिवर्तन करेंगे, देश को एक नई दिशा प्रदान करेंगे, और साथ ही पवित्रता सादगी से जिन्होंने अपने जीवन को संपन्न कर लिया है। ऐसे युवाओं को देख के लगता है कि सचमुच देश का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। जैसे इन्होंने सुंदर प्रयास किया मित्रों, क्या हम सब भी जहां कहीं पे भी हैं एक सुंदर प्रयास कर सकते हैं परिवर्तन की ओर चलने का? स्वयं से शुरुआत करें कि मैं अपने जीवन को बदलकर इस परिवर्तन की शुरुआत करूं, समाज को एक नई दिशा प्रदान करूं, राष्ट्र को फिर से सर्वश्रेष्ठ शिखर पर ले चलने का मैं अपना भी प्रयास और योगदान दूं। इस पे भी हम सबको अवश्य विचार करना है। कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और साथ साथ इस प्रश्न पर भी विचार कीजिएगा कि मैं समाज और राष्ट्र के लिए अपना क्या योगदान दे सकता हूं। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकर्मी के पावन जल से स्वर्ग बन जा।